हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय गुरुगाम भक्तवृंद, भक्ति शास्त्री के भक्ति स्वामी सिंधु के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम वैदिक साधन भक्ति के अंगों का श्रवण वर्णन कर रहे हैं और आज हम 43वें अंग से शुरू करेंगे, जो 10वां अध्याय हमारे पुस्तक में। कल जो कुछ चर्चा हुई उसके विषय में किसी को कोई पढ़ा हो आपने, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई जिज्ञासा हो। विशेष रूप से हमने 3 प्रकार के कीर्तन
को वर्णन किया।
हाँ जी
प्रभु जी, कल आपने बताया था कि चरणामृत लेकर के और बाद में सिद्ध लगाना चाहिए, तो पहले हाथ झुका नहीं लगाना, चरणामृत लेकर के हम बाद में सिद्ध लगाएंगे।
पी के फिर सर पे लगाने का सीधा नेम है, वो झूठा, वो भगवान का आशीर्वाद है। वैसे साफ करते थे सर को, सर के ऊपर लगा के साफ करते थे, पानी से धोके उसको गिराना नहीं है। असल में 3 बूंद लेना है, पीना है, फिर सिर से धारिया भी हम कहते हैं, या तो पहले सर ऐसे नमस्कार करके फिर लेना चाहिए, दोनों बातें हैं। लेकिन हमने देखा है कि लोग लेके फिर सर को हाथ लगाते हैं।
प्रभुपाद लिखते हैं उनके लिए, जहाँ पे चंडाला के लिए, कि ड्यू टू देयर अनक्लीन हैबिट दे आर प्रोहिबिटेड, बट एट द सेम टाइम दे आर गिवन अदर फैसिलिटीज सो दैट दे कैन बी एलिवेटेड टू द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ डिवोशनल सर्विस बाय एसोसिएशन विद प्योर डिवोटीज। तो प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि उनको डायरेक्ट मंदिर में अलाउ नहीं होता बिकॉज ऑफ द अनक्लीन हैबिट, बट उनके पास फैसिलिटी है कि वो बाकी डिवोटीज के साथ एसोसिएट करे। प्रभु जी, कि ये इस्कॉन के लिए भी है कि इस्कॉन में भी मंदिर में चंडालास को मतलब अलाउ नहीं होता?
अलाउ नहीं मतलब क्या? पूजा के मही जा, आप अंदर जाके आरती तो नहीं करेगा ना कोई? कोई मानो के स्वीपर है जो मंदिर में सफाई करने का काम कर रहा है। हमारे मंदिर में है बहुत सारे जो सफाई करते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, उनको कीर्तन सुनने का सौभाग्य, लेकिन वो मंदिर जाके आरती तो नहीं करेगा, भगवान की ड्रेसिंग तो नहीं करेगा ना। वो बाकी उनको सारी सुविधाएं हैं, मंदिर में आए, दर्शन करे, प्रसाद खाए, उसमें कोई मना नहीं है, परंतु हाथ नहीं लगाना है मंदिर के, मतलब ठाकुर जी का रसोई में जाके भोजन नहीं बनाएगा। परंतु वो अगर शुद्ध हो जाए, अपने चरित्र को बदले, भक्ति में आ जाए तो कर सकता है। तो हम 10वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं। कोई कल से एक प्रश्न आपसे पूछे, वो संकीर्तन कितने प्रकार था कल, किसी को याद है संकीर्तन कितने प्रकार का था?
हाँ
बोलिए।
तीन प्रकार का था, तीन प्रकार का था।
बोलिए।
नाम संकीर्तन था।
हाँ
लीला संकीर्तन।
हाँ लीला कीर्तन।
और उनका रूप का था वाला ना,
गुण गुण नाम गुण लीला।
हाँ
नाम लीला गुण,
नाम
और इसके
लीला गुण,
और हर एक का एक
इसके अलावा रूप कीर्तन भी था, वो अदर्श में था, अदर्श पे रही,
अदर्श में कुछ और धाम भी कर सकते हैं रूप भी, परंतु हमारे पुस्तक में 3 उदाहरण है, एक नाम का है, एक लीला का है, एक गुण का है। पहला नाम का, दूसरा लीला का, तीसरा गुण का। तो 10वें अध्याय में प्रभुपाद जी ने लिखा है, 2 विशेष विषय हैं इस अध्याय में, एक श्रवण का कला और एक सुमरण की कला, श्रवण और सुमरण की कला। अब वैसे हमारे नवदा भक्ति में भी ये दोनों अंग है, श्रवण भी है और सुमरण भी है, पर तो यहां श्रवण का भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है श्रवणम, और श्रवण भी 3 प्रकार का है, श्रवणम नाम, नाम श्रवण, नंबर 2 श्रवणम चरित्र श्रवण, नंबर 3 गुण आदि, और गुणों का श्रवण करना आदि में और भी आ जाएगा। श्रुतेर भवेता, इसको कहते हैं श्रवण। और हमारे पुस्तक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भावना में हमारा आना ही श्रवण से होता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं चेतन महाप्रभु कहते हैं श्रवण से हमारा हृदय शुद्ध होता है। और इतना लिखने के बाद पहले परिच्छेद में दो बातें हैं कि हमारी कृष्ण भावना की साधना श्रवण से शुरू होती है। और चेतन महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जन वो श्रवण के लिए कहा है। और फिर हमारे पुस्तक में गरुड़ पुराण का उदाहरण है दूसरे परिच्छेद में, ये है नाम का श्रवण। ये उदाहरण किसके लिए है? नाम श्रवण के लिए। ये श्लोक है गरुड़ पुराण में, संसार सर्प दष्ट नष्ट चैष्टैक भेजसम भेषजम कृष्णेति वैष्णवम मंत्रम श्रुता मुक्तो भवेत नरा। संसार सर्प दष्ट नष्ट चेतसैक, इसका अर्थ क्या है? संसार रूपी सांप ने जिसको डस लिया है उसकी चेतना नष्ट हो गई है। बोला वो अचेत हो गया है। तो इलाज क्या है? भेजसम का मतलब इलाज क्या है? कृष्णेति वैष्णवम नंत्रम, भगवान श्री कृष्ण का विष्णु मंत्र, वैष्णव मंत्र श्रुता, अगर उसके कान में बताया जाए वो सुने, मुक्तो भवे त नर, वो मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि सांप किसी को काटता है जल्दी मरता नहीं है, वो मूर्छित होता है। और उसके ऐसे ही भौतिक जगत में सारे लोग मूर्छित की तरह घूम रहे हैं, कृष्ण नाम उनके कान में पड़ेगा तो वो फिर वापस सचेत हो जाएंगे। और इसमें प्रभुपाद ने पूरा हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, इसलिए कृष्ण महामंत्र जो है ये बड़े से बड़े मूर्छित को भी जागृत कर सकता है। हरे कृष्णा। तो ये हमारा है नाम श्रवण। अब नाम श्रवण के बाद हम जाते हैं चरित्र श्रवण। ये है चौथे स्कंद भागवत का नवा अध्याय, पृथ्वी महाराज के चा वर्णन है। ये श्लोक प्रभुपाद ने दिया है, इस श्लोक के साथ फिर चेतन महाप्रभु का और भगवत गीता का उल्लेख किया है। ये पूरे का पूरा ये श्लोक, फिर चेतन महाप्रभु, फिर भगवत गीता, ये तीनों परिच्छेद जो है चरित्र श्रवण के विषय में है। और चरित्र श्रवण में जो एक शब्द है उसको लेके प्रभुपाद ने विशेष विस्तार किया है। यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यगर चेतसा। यत्र भागवता, जहां भगवान के परम भक्त महाराज साधु भगवत गुणों का कथन करते हैं, भगवान के श्रवण व्यग्र चेतसा, और उसको बड़ी उत्साह के साथ ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और ये जो मुख्य श्लोक है जो यहाँ लिखा है 40वां, ये 39वां है, 40 में लिखा है, क्या मिलेगा? तस्मिन महन मुखरिता मधुश्री चरिता, उनके मुख से जो अमृत चूरा है वो पीयूषा, वो अमृत है। शेष शरीता परीता श्रवन्ति श्रवणन्ति, वो एक नदी की तरह बहता है। भगवत भागवत पुरुष के मुख से हरि चरित्र की जो अमृतमयी गंगा बहती है, जो भाग्यशाली उसको सुनता है, ताये पिबंती अवित्रशो नृप गाढ़ का कारणैस बहुत ध्यान पूर्वक कान देकर सुनते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम लिखा है श्रवण की कला। श्रवण की कला का मतलब श्रद्धा पूर्वक निम्रता से भगवत नाम रूप चरित्र को गुण को सुनना। तो लाभ क्या होगा, यह लाभ लिखा है तानश्वरंति असन्न तृढ़ भय शोक मोहा। ऐसे सुनने वाले को न भूख तपा भूख सताएगी, न प्यास सताएगी, न भय सताएगा, न शोक सताएगा, न मोह सताएगा। पांच चीजें सताएंगे नहीं। परीक्षित महाराज क्या सुन रहा था, भागवत। भागवत में तो भगवान का नाम गुण रूप चरित्र तीनों है। और श्रवण की सिद्धि क्या है, श्रवण का आचार्य हमारे पास है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज श्रवण भक्ति का आचार्य है। और श्रवण की सिद्धि क्या है, भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे, नींद नहीं आए, दुख नहीं हो, परेशान। और परीक्षित महाराज 7 दिन बिना खाए पिए के, बिना सोए के भागवत सुन रहे थे। तो इसको कहते हैं श्रवण की सिद्धि। श्रवण में इतना तलीन हो जाए कि शरीर की आवश्यकताओं का पता ही न लगे। ये श्लोक के अंत में, ये आप अपने पुस्तक में इस श्लोक का अनुवाद लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये अंत में पांचों चीजें लिखी है, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, शोक मोह नहीं होगा, भय नहीं होगा। और फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कली काल में और कोई साधन, जो वेदों का वर्णन है, कौन से साधन, ध्यान नहीं हो सकता, यज्ञ नहीं हो सकता, पूजा नहीं हो सकती, परंतु भगवान का नाम कथा सुनी जा सकती है, कीर्तन सुना जा सकता है। अब सावधान करते हैं प्रभुपाद जी, श्रवण जरूर करना चाहिए हरि कथा का, परंतु भगवान के भक्तों से। अब भक्तों से या व्यवसाय कथा करने वालों से सुनने का ज्यादा लाभ नहीं है। अब प्रभुपाद जी भगवत गीता, आप में से कोई जरा ये पढ़ के मुझे बताएं, प्रभुपाद जी ने इस यहाँ भगवत गीता में कौन से श्लोक का उल्लेख किया है, कोई आप में से पढ़े जरा। जैसे भगवत गीता में कहा गया है भौतिकवादी छोड़ सकता है भौतिक सारी लालसाओं को, भागदौड़ को, और कृष्ण भावना में आ सकता है, क्योंकि ये कौन सा श्लोक है आपके विचार में, जरा बोलिए, विचार करो, बताओ। आपने पढ़ा है भगवत गीता, प्रभुपाद ने यहां लिखा है कि भगवत गीता में कहा हुआ है, ये कौन सा श्लोक है,
कर्मा भ्रमोद्भावम विधि।
हाँ जी,
कर्मा भ्रमोद्भावम विधि,
ये भगवत गीता में कौन से अध्याय की बात कर रहे हैं,
थर्ड चैप्टर की।
थर्ड चैप्टर में कौन सा श्लोक है,
15th।
क्या लिखा है
इसके अंदर, लिखा है रेगुलेटिव एक्टिविटीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास एंड द वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंटली द ऑल।
उससे कुछ लेना नहीं है भगवत गीता का, यहाँ ये श्लोक वो नहीं है। अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूं, ये श्लोक दूसरे अध्याय का है। और इसके प्रभुपाद जी के लेखनी में 5वीं 6ठी लाइन में जाओ, लिखा हुआ है, जो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है, कौन सा श्लोक हो सकता है। ऐसे पढ़ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कौन सा भगवत गीता का श्लोक प्रभुपाद ने लिखा है, पहले वो ढूंढो फिर नीचे जाए।
2.44 तो नहीं है, भोक्ता
राम, नहीं
भोगेश्वर,
नहीं भोगेश्वर पर सकता राम तया पर चेत साम, ये तो नहीं हो सकता है। वो श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है, मुख्य वो बहुत मुख्य श्लोक है बहुत, और यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है, जरा ढूंढो, दिमाग लगाओ।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ जी,
2.13
क्या लिखा है,
देनो स्मरण था जे कोमलम यौवनम
जरा। नहीं नहीं नहीं, नहीं इससे कोई मतलब नहीं है,
नहीं नहीं ये नहीं, 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 मेरा भूल।
उसमें शब्द है रस, एक शब्द भी बोलता हूँ आपको, रस है। क्या है?
259।
हाँ क्या है? परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, ये है श्लोक, ये श्लोक है। अब इसके ऊपर आप लिख दो अपने किताब में कि भगवत गीता का ये श्लोक है, कौन सा, 255 259 है। अब आपको लग रहा है ये है कि नहीं है? अब आप पढ़िए, देखो ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
यही है, विषया विनर्वन्तन्ते निरायस्तिदेना रसवर्जन सोलियस्तस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
हाँ, पर ये जो प्रभुपाद जी ने लिखा है ये श्लोक आपको अभी समझ में आ रहा है कि यही है? यहाँ जो अपने पुस्तक में पढ़ के देखिए, भगवत गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या लिखा है, यही श्लोक है कि नहीं? आप सब लोग इस लेखनी में ये श्लोक आपको संतुष्टि पूर्वक समझ में आ रहा है?
जी प्रभु जी, लिखा है उसमें, द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट बाय कंस्टेंट रेगुलेशन इज समथिंग लाइक रिस्ट्रिक्टिंग द डिजीज पर्सन।
हां, सुपीरियर इन है अब बवाल है, मत एवरीवन इज एंगेज इन द रिलीज द एक्टिविटीज ऑफ द सुपीरियर एनर्जी परफॉर्म्ड बाय कृष्ण देन फॉरगेट द लेसर प्लेजर। वही है, छोटी चीजें कब छोड़ेगा, जब वो ऊपर की उत्तम चीज की अनुभूति होगी। और इसके नीचे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत गीता भी भगवान के मुख से अमृत चूरा है और अर्जुन ने उसको ध्यान पूर्वक सुना है और अर्जुन का मोह नाश हो गया। अब प्रभुपाद ने ये क्यों लिखा है, यहां भक्तिरसामृत सिंधु में ये नहीं है, ये प्रभुपाद जी का अपना तात्पर्य है। देखो ऊपर लिखा है ना, शोक मोह चला जाता है भगवान की कथा सुनने से, भगवान के भक्तों के मुख से अमृतमयी कथा सुनने से शोक मोह भूख प्यास चली जाती है। तो यहां अर्जुन का मोह चला गया, प्रभुपाद ने लिखा है। जब भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन ने भगवत गीता रूपी अमृत की गंगा सुनी तो उनका मोह चला गया। तो ये प्रभुपाद जी का अपना तात्पर्य है इस श्लोक के ऊपर, ठीक है। अब हम जा रहे हैं तीसरे श्रवण की कला को, उसको कहते हैं गुण श्रवण। ये लिखा हुआ है 12वां स्कंद के 3रे अध्याय का श्लोक है, 12:3-15। ये अपने पुस्तक में लिखा है, देख लो। यस्तोत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते अभीक्षणम मंगलघ्न तमेव नित्यम श्रुणाद अभीक्षणम कृष्णे अमलम भक्तिम अभिस्पमान। यह श्लोक जिस भाग्यशाली को कृष्ण की शुद्ध भक्ति की इच्छा हो उसको उत्तम श्लोकों के गुणों का श्रवण करना चाहिए। और ये गुण जब बार बार सुनेगा तो सब अमंगल नाश हो जाएगा और भक्त निरंतर सुनने से उसको निरंतर तमेव नित्यम श्रुण्याद अभीक्षणम, दिन रात सुनना चाहिए, हर समय सुनना चाहिए, भगवान के गुणों को सुनना सारे अमंगल को नाश करने वाला है और भगवान की शुद्ध भक्ति देने वाला है। यह हमारा श्रवण की कला का 43 अंग पूरा हुआ, हम 44 अंग में जा रहे हैं। 44 अंग का नाम है तत्कृपा ईक्षणम का मतलब भगवान की कृपा में की आशा करना। भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे ये आशा करना, इसका अर्थ है कि भक्ति में हमेशा भगवान की कृपा के लिए आशावान होना चाहिए। और इसके लिए एक श्लोक लिखा हुआ है भागवत के दसम स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये श्लोक भी भक्तों के लिए प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है, आप देखिएगा, ये भागवत का श्लोक भक्तों के लिए मार्गदर्शन है। आप दूसरे परिच्छेद में पहली लाइन को पहले पढ़ लिए कि ये श्लोक भक्तों के लिए मार्गदर्शन है उनके जीवन में। मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, ये श्लोक भी कोई भाग्यशाली याद करे तो अपने लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भक्ति के लिए भक्त के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाण भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृदवाकवपुभे विदधं नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। ये ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को बछड़े और ग्वाल बाल चुराने के उपरांत वापस जब आए तब प्रार्थना कर रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रह्मास्तुति। भगवान जो आपकी कृपा के लिए सदा ही उत्सुक इच्छा से आशा लगाए बैठा रहता है कि आप अहितुकी कृपा करेंगे, तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणः, और जब वो कृपा की आशा करेगा तब उसकी स्थिति क्या होगी, बड़े शांति पूर्वक जो भी उनके जीवन में कर्मों के फल पके हैं अथवा भक्ति के अंदर कोई दुख सुख आया है उसको सहता रहेगा। भुंजान एव आत्मा कृतम विपाकम, जो पक गए हैं भक्ति करते हुए, अपराध कोई पक गया है तो उसका दुख आया है, या भक्ति में कोई सुख आया है अथवा कर्मों का कोई सुख दुख है उसको भोगता रहेगा। आशा की इच्छा मन में बनी रहेगी, इतनी बड़ा भगवान कृपा करेंगे। और दूसरा काम क्या करेगा, एक आशा की कृपा इस श्लोक में है, दूसरी बात यह है हृदयवाग वपोभिर विदधम नमस्ते, अपनी वाणी से, अपने शरीर से, अपने मन से सदा ही भगवान को नमस्कार करता रहेगा, सेवा में लगा रहेगा। तो दो सिद्धांत है साधन भक्ति के, इसमें एक आशा की अभिलाषा रखना और दूसरा सदा ही भगवान को नमस्कार करना। और ऐसे मुश्किल समय में वो भगवान का स्मरण करता रहा, आशा के उम्मीद लगा के बैठा रहा, आशा में रहा, तो निश्चित रूप से वो जो भगवान सबको मुक्ति देता है उसके चरणों के सानिध्य को प्राप्त करेगा। दाय भाग शब्द का अर्थ है बेटा अगर जीवित रहे तो पिता की संपत्ति का वारिस बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। ऐसे ही भक्ति में दुख सुख सहते भक्त भक्ति में लगा रहे, दो काम करता रहे, एक आशा बनाए रहे और एक नमस्कार करता रहे, और जीवित भक्ति में पक्का लगा रहा तो निश्चित रूप से वो भगवान के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त करेगा। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो इस श्लोक में दो साधन है। पहला साधन है कि भगवान कृपा दृष्टि डालेंगे, भगवान की कृपा दृष्टि की आशा, आशा का मतलब उम्मीद, आशा, और दूसरा भगवान को प्रणाम करना। और ये बहुत बड़े शक्तिशाली साधन है। आप अपने पुस्तक में ये प्रभुपाद जी का अनुवाद इसके ऊपर पढ़े हैं। भक्त कहेगा मेरे को तो, मैं बड़ा पापी था, थोड़ा ही तकलीफ दिए, भगवान ने बड़ी दया की है, मैं इससे शुद्ध हो जाऊंगा। और ऐसे मुश्किल भी भक्त के जीवन में आते हैं तो कृष्ण की कृपा को ही वो समझता, कृष्ण की कृपा है,
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ जी
प्रभु जी, इसमें इंग्लिश वाले में तो प्रणाम नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है दो एक्स, वी हैव टू सिंपली थिंक ऑफ कृष्णा एंड एक्सपेक्ट हिज मर्सी।
वो वहाँ शब्द लिखा है ना, जो संस्कृत श्लोक में नमः शब्द लिखा है ना, मन वचन कर्म से नमस्कार करता है, वो जो संस्कृत श्लोक में ओरिजिनल में नमस्कार शब्द है। और जीव गोस्वामी ने कहा है दो साधन है, एक कृपा की दृष्टि और दूसरी नमस्कार करता रहेगा, एक आशा, क्योंकि हमारा जो यहाँ ऊपर टॉपिक है वो है आशा, तो उसी को महत्व दिया है, परंतु इसमें नमस्कार भी है कि वो सेवा में लगा रहेगा।
इंग्लिश में obeisance is a respectful obeisance from the core of his heart।
हाँ ठीक है ना, वो है जरूर है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे भक्त के जीवन में दुख सुख तो कर्मों के नाश भी हो जाते हैं, भक्ति के अंतर से कभी सुख भी मिलता है, कभी अपराधों का दुख भी मिलता है। और हमारे आचार्य लिखते हैं कि भगवान जब दुख देता है, भगवान दुख देता है तो ऐसे जैसे बाप कभी बच्चे को थप्पड़ मारे, तो पिता माता अगर बच्चे को कभी कठोर होते हैं तो उसकी भलाई के लिए होते हैं, ये भी उनकी कृपा है। तो कभी कभी पिताजी जो है आलिंगन करके चूम लेता है और कभी थप्पड़ भी मारता है, तो दोनों में ही कृपा है। ऐसे भगवान कभी भक्त को किसी कठोर परिस्थिति से निकालते हैं इसलिए ताकि वो पक्का हो जाए, वो कुंदन बन जाए। पांडव कितनी मुश्किल परिस्थिति से निकले हैं, भगवान ने ये सब योजना क्यों बनाई, और हर समय वो आशा लगा के बैठे थे कि कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और सदा ही कृष्ण के प्रति उनकी जो है सेवा भाव बना हुआ था, स्नेह और प्रीति बनी हुई थी। तो उदाहरण ये है, और वो फिर भगवान के चरण कमलों, ये मुक्ति का अर्थ नहीं है, मुक्ति पदे शब्द है। वैसे सामान्य मुक्ति का अर्थ होता है मुक्त होना, परंतु मुक्ति पदे का मतलब है जो मुक्ति देके अपने चरणों की सेवा देगा, इसका मतलब भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। तो मुक्ति सिर्फ मुक्ति नहीं है, मुक्ति पदे का मतलब जिसके मुक्ति देने वालों के, देने वाले के चरणों की सेवा प्राप्त करेगा। लोग उससे मुक्ति मांगेंगे लेकिन वो जो ऐसे आशा लगा के बैठा रहेगा उनको चरणों की सेवा मिलेगी। अब हम जा रहे हैं 45वें अंग पे, स्मृति ही मतलब भगवान का स्मरण करना। यथा कथम जैसे तैसे, यथा कथम चिन मनसा संबंध स्मृते उच्यते, किसी प्रकार से मन कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करे उसको स्मरण कहते हैं। देखो हमारे पुस्तक में क्या लिखा है, कि किसी प्रकार से कैसे भी, किसी प्रकार से भी कोई अपने मन का संबंध कृष्ण से जोड़ के रखता है तो उसको स्मरण कहते हैं। और इसके लिए, इसके प्रमाण के लिए विष्णु पुराण से एक श्लोक है, स्मृते सकल कल्याण, स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषम तमजम नित्यम व्रजामि शरणम हरिम। मैं हरि का शरण लेता हूं, अजन्मा भगवान नित्य हरि का शरण लेता हूं, जिसके स्मरण मात्र से सभी मंगल जीवन में होता है। ये श्लोक हमारे पास है, और एक और श्लोक भी हमारे पास पद्म पुराण का है, इसको रूप गोस्वामी कहते हैं स्मरण के लिए प्रमाण। ये दो प्रूफ है, एविडेंस है। अब दूसरा स्मरण के लिए क्या लिखा है, प्रियाणे चा प्रियाणे च, मरते समय जीते समय, जीते जीते या अंत समय में भी, यन नाम स्मृताम निर्णाम, भगवान का कोई नाम स्मरण ले, सदयो नश्यंती पाप होगा, उसके पापों के ढेर समाप्त हो जाते हैं। नमस्तस्मै चिदात्मने, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। जो चिदात्मने, जो सर्वव्यापक भगवान है, जिसके स्मरण मात्र से चाहे अंत समय में हो चाहे वैसे हो, प्राणे चा अप्राणे, जीते जी या मृत्यु समय स्मरण हो जाए तो सारे जन्म जन्मांतर के पाप का ढेर समाप्त हो जाता है। ये दो चीजें स्मरण में है। अब हमारा पूरा अध्याय का अभी से ये ध्यान जो है, ये पूरा अध्याय इसके ऊपर एक कथा के साथ, इसके अंदर एक कथा है। तो अब ध्यान के ऊपर,
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ जी
प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं डिस्टर्ब करने के लिए। इसमें स्मरण और चिंतन में क्या डिफरेंस होता है प्रभु जी? स्मरण और चिंतन,
चिंतन आया कहाँ है? चिंतन तो आया ही नहीं, अलग अलग कोई हमारे पास अंग भी नहीं है भक्ति का।
नहीं, वैसे एक शब्द है ना, चिंतन भी करना चाहिए, मनन भी करना चाहिए और स्मरण भी करना चाहिए, तो डिफरेंस क्या है ये जानने के लिए पूछा आपसे।
अभी एक और देखो, आगे जो आ रहा है ध्यानम।
ओके ओके,
अब देखो स्मरण हो गया, अब ध्यान आ रहा है। अब ध्यान और स्मरण में क्या अंतर है ये भी देखना है। तो ध्यानम, ध्यान क्या है? ध्यानम रूप गुण कीड़ा सेवा सुष्ट चिंतन। अब देखो यहाँ शब्द है चिंतन, चिंतन थोड़ा गहरा होता है। सुमरण जे जिस किस किसी प्रकार से, सुमरण के लिए क्या शब्द लिखा है? जैसे कैसे, उसका मतलब उस पर, चिंतन का मतलब बहुत ध्यान पूर्वक। तो यह शब्द लिखा है जो हम पढ़ रहे हैं ध्यान, इसके लिए जो श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में, वो कहता है ध्यानम। ध्यान किसको कहते हैं? रूप, एक नंबर रूप, नंबर दो गुण, नंबर तीन क्रीड़ा मतलब लीला, और नंबर चार सेवा, और फिर आदे, और फिर है सुष्टु चिंतनम। सुष्टु चिंतनम का मतलब बहुत गंभीर सुमरण, बहुत तलीनता। चिंतन का मतलब वो ये न के न प्रकार है न, कैसे भी भगवान का सुमरण हो जाए, लेकिन ये तो ध्यान पूर्वक वैसे करना है। तो चिंतन ध्यान का के अंतर्गत आता है। ये सुमरण से ज्यादा गंभीर और गहरा है, इसको सुष्टु चिंतनम लिखा है। टू कंटेम्पलेट विथ एब्जॉर्प्शन, कंटेम्पलेट विथ एब्जॉर्प्शन, बड़े जिसको कहा है तलीनता से ध्यान करना। तो ध्यान देखिए, आपके पास स्लाइड में हमारे पास चार प्रकार का ध्यान है, रूप का, गुण का, लीला का और सेवा का।
ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।
तो देखिए, पहले प्रभुपाद जी तो ध्यान की परिभाषा लिख रहे हैं, मन को भगवान के रूप के, गुण के, देखो, और लीला के और सेवा के स्मरण में लगाना। ये देखिए आपका पहली लाइन जो है ना, ये भक्ति रसामृत का जो श्लोक है उसकी उसका परिभाषा है। तो पहले है ध्यान कहते किसको है, और फिर चार प्रकार का ध्यान हो गया। और प्रभुपाद जी सावधान करते हैं, ध्यान कोई शून्य का नहीं होता है, निर्विशेष का नहीं होता है, ध्यान हमेशा भगवान विष्णु का होता है, भगवान के चरण कमलों का होता है। और अगर हम ध्यान करेंगे तो सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये नरसिंह पुराण का श्लोक है पहले, और ये है रूप ध्यानम। आप पहले के सामने लिखें रूप ध्यानम, नरसिंह पुराण जो है रूप ध्यानम है। भगवत चरण द्वंद्व ध्यानम निर्द्वंद्वम ईरितम पापिनोपि प्रसंगेन व्यतम सुहितम परम। भगवान के दो चरण कमलों का कोई ध्यान करे तो फिर द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा। भले कोई कितना भी पापी हो, अचानक भी एक बार ध्यान करे तो भी अति उत्तम लाभ प्राप्त करेगा, स्थितम परम। ये हमारा पहला है बड़े पापों से मुक्त हो जाएगा। दूसरा आ रहा है विष्णु धर्म से गुण ध्यानम, तो इसके नीचे जो विष्णु धर्म है इसके सामने लिखो गुण ध्यानम, नरसिंह प्राण रूप ध्यानम, ये गुण ध्यानम। ये कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणम हरे, भक्ति से जब भक्त भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं, प्रक्षीणः कलुसौघास्ते प्रविशन्ति हरे पदम, उनको लाभ क्या होता है, सारे प्रकृषीण कलुषः ओघार, जितना भी पाप कलमश है सब नाश कर देते हैं और भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। यह क्या लिखा है, पापों से मुक्त हो जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा। प्रभुपाद बिना पाप से मुक्त हुए कोई भगवत धाम में नहीं जा सकता है, बस भगवान के केवल गुणों का श्रवण करेगा तो भगवत धाम जाएगा। अब पद्म पुराण का श्लोक आ रहा है तीसरा आगे, यह है क्रीड़ा ध्यानम, इसका मतलब भगवान की लीला का ध्यान, यह है क्रीड़ा ध्यानम पद्म पुराण का। सर्व माधुर्य शाराणी सर्वाद्भुत मायानी मायानी च ध्यानम हरेश्चरित्राणी लीला तानी विमुच्यते। जो भाग्यशाली भगवान के मधुर अद्भुत और ललित सुंदर लीलाओं का ध्यान करता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। विमुच्यते हरे लीला तानी चरितानी, भगवान के लीला क्रीड़ा का जो चरित्र करता है वो मुक्त हो जाता है। अब आ रहा है चौथा सेवा ध्यानम, इसके ऊपर ये हमारा दो पेज की पूरी कथा है, हम आपको संक्षेप में बता देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। अब चौथा यहां लिखा है जो ये उसी पुराण में लिखा है, उसी पुराण में एक और बात लिखी है, पहले लिखा है सम पुराण लिखा है, किसी पुराण में, कौन सी पुराण में नहीं लिखा है, कोई खास नाम नहीं लिखा है। मानसेन उपचारेण परिचर्य हरिम सदा परेवान मनसा गमयम ताम साक्षात प्रतिपेदिरे। मनस उपचारेण मानसिक पूजा, मन से पूजा करे, परिचर्या हरिम सदा हरि की सेवा करे मन से, परेवान मनसा अगमयम, परेवा मनसा अमगमन का मतलब है वो भगवान जो वाणी से और मन से परे है उसका अगर ध्यान करे और ध्यान में सेवा करे, तम साक्षात प्रतिपेदरे, तो उस भगवान को साक्षात प्राप्त करेगा। इसके लिए एक शब्द आप लिखें उसी को समझिए, इसको सेवा ध्यानम कहते हैं, इसको कहते हैं मानसी सेवा। और हमारे पुस्तक में जो कथा है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है और प्रतिष्ठानपुर नाम के दक्षिण भारत के नगर के एक ब्राह्मण की कथा है। अब उस कथा में ये है कि ब्राह्मण ने सुना कि भगवान अगर किसी के पास धन नहीं है, सेवा के लिए साधन नहीं है, परंतु मन से सेवा करे तो भी भगवान जो मन और वाणी से परे है उसका साक्षात सानिध्य प्राप्त कर सकता है। तो वो कई सालों सत तक ब्राह्मण सुबह उठ के भगवान का स्मरण करके नहा के फिर सारे पवित्र नदियों का, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती का जल भर के लाता था, सोने के कलश में भर के लाता था ये मन से, और बहुत सुंदर सोने का सिंहासन बना के भगवान का अभिषेक करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाना भगवान का। अब जब मन से ही करना है तो उसमें कंजूसी क्यों करनी, और सभी उत्तम सेवा करता रहा और ऐसे सेवा कई सालों तक करता रहा। एक दिन उन्होंने भगवान के लिए भोग में खीर बनाई और बहुत सुंदर दूध को गर्म किया, गाढ़ा किया, उसके अंदर केसर कस्तूरी डाला, फिर मेवा डाला सूखा, और फिर बहुत मिश्री डाली, और फिर कहा कि भगवान को तुलसी दल डाल के अर्पण करता हूँ। तब देखा कि शायद दो खीर बहुत गर्म है और ब्राह्मण ने उसमें उंगली डाल दी तो उसकी उंगली जल गई। अब खीर थी नहीं, वहां उंगली जल गई, और वैकुंठ में बैठे हुए नारायण मुस्कुराए। लक्ष्मी देवी ने कहा क्या बात है, क्यों हंस मुस्कुरा रहे हो? तो उत्तर नहीं दिया, अपने पार्षदों को भेजा, उस ब्राह्मण को वैकुंठ में बुलाया, और जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तब लक्ष्मी को बताया ये ऐसे खीर का भोग लगा रहा था, इसकी उंगली जल गई थी। तो उसको भगवान विष्णु का मानसिक सेवा से सानिध्य प्राप्त हो गया। हमारे रघुनाथ दास ठाकुर राधाकुंड पे रहते थे, एक छोटा दोना छाछ का पीते थे। एक बार उनको पेट खराब हो गया तो जतिपुरा में वल्लभ संप्रदाय के विठल आचार्य, जो वल्लभ आचार्य के पुत्र है, उसने अपने वैद्य को भेजा कि ये बड़ी महान ब्रज की विभूति है और इनको थोड़ा सा शरीर में रोग हो गया है, आप जाके चिकित्सा करो। तो वैद्य ने नारी को पकड़ के देखा और कहा इन्होंने खीर खाई है, उससे इनका पेट खराब हुआ है, बदहाजमा हो गया है। तो सारे ब्रजवासी कहे भाई वह, अरे बड़े वैद, बाबा तो कभी छाछ के अलावा पीता नहीं है, खीर कहाँ से आई, तेरा अकल कहाँ चला गया? वैद्य कहते देखो मेरा शास्त्र ज्ञान कहता है आयुर्वेद का कि इन्होंने खीर खाई है, अगर आप नहीं मानते हो तो मैं दवाई देता हूँ, ये वमन करेगा, वमन करेगा, उल्टी करेगा, उसमें खीर आ जाएगी बाहर। तब रघुनाथ दास बोले कि वैद्य सही कह रहा है। तो वो सारे ब्रजवासी कहते हैं बाबा आप छाछ पीते हो, खीर कहाँ से आ गई? बोला खीर नहीं थी, हाँ खीर बहुत सुंदर भगवान राधा कृष्ण को अर्पण की, रूप मंजरी ने ललिता को दी, ललिता ने राधा कृष्ण को दी, और प्रसाद में वापस आई तो मुझको जबरदस्ती पिलाई। तो भगवान के प्रसाद की खीर मानसिक पी और पेट खराब हो गया। ऐसे हमारे और भी आचार्य दूध गर्म करते हुए, नरोत्तम दास ठाकुर का मानसिक सेवा में हाथ जल गया और जीव गोस्वामी ने कहा ये कैसे बोला, ऐसे हाथ जला, माँ दूध गर्म कर रहा था मन से, इसको कहते हैं अपने मानसी सेवा। ये आपको जब हम आगे साधक रूप और सिद्ध रूप, सेवा का दो तरीके हैं, साधक रूप से और सिद्ध रूप से, तो साधक रूप से सेवा करनी है और सिद्ध रूप से करनी, ये है सिद्ध रूप की सेवा, इसको कहते हैं मानसिक सेवा की सिद्धि। इसका अर्थ नहीं है कि हमारे पास सब कुछ सुविधाएं और भगवान को मन से लगाएं और हम हलवा पूरी खाएं, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ है कुछ नहीं है, जैसे हमारे बाबाजियों के पास कुछ नहीं था, जो हमारे यहाँ रहते थे गोस्वामी, तो मानसिक सेवा से भगवान का सब श्रवण कर लेते थे। तो हमारा ये अध्याय पूरा होता है और आगे वाले अध्याय में हम श्रवण पहला शुरू कर देते हैं आज। अब दास्यम आता है, ये अंग है 47वां, इसको सरल भाषा में आप देखिए दास्यम को। हमारे पास दास्यम को दो प्रकार का लिखा हुआ है, एक को कहते हैं कर्म अर्पणम और दूसरे को कहते हैं कैंक्रियम। कैंक्रियम का मतलब किम करोमि, क्या करूं, मतलब आज्ञाकारी, जैसे हनुमान बैठा है राम जी के द्वार के ऊपर, क्या करूं, कैंकरीय शब्द का अर्थ है किम करो मी, क्या करूं, मतलब जब दरवाजे पे बैठा है। और पहला है कर्म अर्पणम। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कुछ लोग मानते हैं कि वर्ण आश्रम का कर्म अर्पण कर्म को दास्यम कहते हैं, परंतु हम नहीं मानते। तो कर्म अर्पणम में दो विभाग हैं, कर्म अर्पणम में दो विभाग है। देखिए, एक है कि अपने पुण्य वर्ण आश्रम के कर्म अर्पण करना, ये है अ, और ब है अपने भक्ति के कर्म जप आदि अर्पण करना। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं दास्यम में जो पहला वर्ण आश्रम का पुण्य कर्म अर्पण करना है वो भक्ति में दास्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा, परंतु जो दूसरा है भक्ति के कर्म जप आदि वो अर्पण को दास्यम कहा जाएगा। और इसके लिए फिर हमारे पास स्कंद पुराण का श्लोक है। और दूसरा जो दास्यम है किंक्रियम, वो उसके लिए नारदीय पुराण का श्लोक है। तो अब दास्यम दो प्रकार का होता है, ये आप समझ लीजिए, कैंक्रियम और कर्म अर्पणम। परंतु कर्म अर्पण दो प्रकार का है, एक तो वर्णाश्रम के पुण्य, वो दास्यम में नहीं है, कुछ लोग उसको दास्य मानते हैं, उसको श्री रूप गोस्वामी नहीं मानते। परंतु दूसरा दास्यम जप आदि भक्ति के कर्म अर्पण को दास्यम माना जाता है। तो इसके लिए स्कंद पुराण का श्लोक पढ़ रहे हैं और दूसरे कैंक्रियम के लिए नारदीय पुराण का श्लोक पढ़ रहे हैं। दास्यम कर्प कर्मार्पणम तस्य कैंक्रियम अपि सर्वथा, दो बातें हैं, कर्मार्पणम और कैंक्रियम। आप स्कंद पुराण का श्लोक पढ़ रहे हैं, तस्मिन् समर्पितम कर्म स्वभाविकम अपीश्वरे भवेद भागवतो धर्मस्तत्तर्किम उतार्पितम। अपने वर्ण आश्रम के जो भी कार्य है वो अगर भगवान को अर्पण किए जाएं तो वो भागवत धर्म हो जाएगा। तो फिर जो भक्ति के कार्य है वो अर्पण किए जाए तो उसका क्या कहना। और भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है रूप गोस्वामी के लिए दो प्रकार का जो ये कर्म अर्पण है ना वर्ण आश्रम का, उसमें से दूसरे को ही जप आदि को ही माना जाएगा, पहले पुण्य कर्मों को नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया पहला दास्यम किंक्रियम, और ये पहला हो गया कर्म अर्पणम। उसके दो विभाग हैं, एक पुण्य कर्म वर्णाश्रम के, वो दास्यम में नहीं है, दूसरा अपना स्वाभाविक अपना भक्ति के कर्म जप सेवा भागवत श्रवण ये सब अर्पण करना, ये दास्यम है। परंतु किंक्रियम इससे ऊपर है, कुछ लोग इसको दास्यम कहते हैं। अब कैंक्रियम का नारदीय पुराण में कैंक्रियम का ये लिखा है, ये है असल में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, ये है वास्तव में दास्य।
हरे कृष्ण प्रभु जी,
ये वास्तव में दास्य, सुन लीजिए। फिर ये जो आप देखे अपने पुत्र स्कंद पुराण का देख लिया, और दूसरा नारदीय पुराण का हम पढ़ने जा रहे हैं अब। इहा यस्य हरे हृदयस्य कर्मणा मनसा गिरा निकलेषु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तस उच्यते। इहा इस जीवन में यस्य, अपने आपको हरि का दास समझता है, अपना शरीर का कर्म, मन का कर्म, वाणी का कर्म हर अवस्था में भगवान को अर्पण करे उसको जीवन मुक्त कहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं ये है असल में दास्यम, इसको कहते हैं कैंक्रियम दास्यम। अब आपका क्या प्रश्न है पूछिए, बस यहाँ खत्म करेंगे, अगली बार यहाँ से आगे पढ़ेंगे।
वर्णाश्रम कर्म क्या होते हैं प्रभु?
क्या
वर्णाश्रम
का कर्म? ये है कि ब्राह्मण का अपना कर्म होगा, पूजा वूजा करेगा वो, क्षत्रिय का अपना कर्म होगा, तो उसके अंदर जो पुण्य कर्म है जैसे यज्ञ आदि करता है वो अर्पण करेगा तो उसको दास्यम नहीं कहा जाएगा।
अच्छा।
वर्ण आश्रम के पुण्य कर्म जैसे पूजा करता है, मंदिर में जाता है, यज्ञ कराता है, दान देता है, वो नहीं आएगा।
ओके।
उसको दास्यम नहीं माना जाएगा।
ओके।
हाँ जी, तो इस अध्याय के बाकी अगली बार पढ़ेंगे। सख्यम इसके बाद, सख्यम में इसको फिर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें भी दो विभाग हैं, श्रद्धा सख्य और मैत्री पूर्ण, श्रद्धा और मैत्री। परंतु ये बहुत ऊपर का स्तर है, सख्यम और आत्मनिवेदन ये दोनों ऊपर के स्तर है, इसका चर्चा अगली बार करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में मैं समझता हूँ हम वैदिक साधन भक्ति के अंगों को शायद पूरा कर पाए, नहीं तो अंतिम बचेंगे 4-5 मुख्य अंग, उसका ये हो सकता है एक क्लास और हो जाए।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ, अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हाँ जी, हाँ जी,
हरे कृष्ण
बोलिए। हाँ जी,
किन कुलों की दोबारा समझा दीजिए, किम क्रिया क्या हुआ, किम क्रिया कैसे?
हमने हमने आपको कहा किम करो मैं क्या करूं, कोई आपका सेवक दरवाजे पे बैठा हो कहे के क्या करूं, आज्ञा करो, उसको कहते हैं कैंक्रियम। कैंक्रियम का मतलब क्या करूं, इसका मतलब हाथ जोड़ के खड़ा हो, आज्ञा कीजिए क्या करो, उसको कहते हैं दास्यम। हाँ, दास्यम कैंक्रियम का एक दो में से एक कैंक्रियम है, वो तो है वास्तव में दास्यम, और दूसरा जो है कर्म अर्पणम दास्यम में है, उसमें एक तो है दास्यम, एक नहीं है।
जी जी।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।
हाँ जी बोलिए
प्रभु जी। इसमें प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं, बट इफ देयर इज सम स्टिल सम अट्रैक्शन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफाइंग एक्टिविटीज, देन द रिजल्ट ऑफ सच एक्टिविटीज शुड बी ऑफर्ड टू कृष्णा। प्रभु जी मतलब अगर माइंड में भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है तो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते रहे और उसके उसको मतलब कृष्णा को ऑफर करते, इसका क्या मतलब हुआ?
ये प्रभुपाद का कहने का, जैसे कि आपको नौकरी करनी है, पैसे कमा रहे हैं, तो उसका कुछ भगवान को अर्पण करते रहो, तो आस्ते आस्ते यहाँ तक भी कहे कि भगवान को अर्पण करने का मतलब है कि हमारे वो गृहस्थी है, घर है, बच्चे हैं, तो वो बच्चों को भगवान की सेवा में लगाएं। ऐसे अभी हम भोग, जैसे हम सब ग्रस्त हैं तो भोग तो हमारे पास लगा ही हुआ है, ऐसे नहीं कि हमने भोग दुनिया को छोड़ दिया, तो ये भगवान की सेवा में लगाएं, तो वो आस्ते आस्ते आगे बढ़ सकता है। वो दास्य में, उसको दास्य में स्वीकार नहीं किया गया है, ये जो कर्म अर्पण है इसको दास्यम में स्वीकार नहीं किया गया है, पुण्य कर्म जो है उनको। परंतु जप आदि का कर्म हमें ये अर्पण करेंगे तो ये दास्यम में माना जाएगा।
इसी में लास्ट लाइन एक और है कि इट इज सेड दैट अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस बाय हिज बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, और इवन अ पर्सन हु इज नॉट प्रैक्टिकली एंगेज बट इज सिंपली डिजायरिंग टू डू सो इज कंसिडर्ड टू बी लिबरेटेड। प्रभु जी अगर हमारे पास रिसोर्सेज है और हम मतलब सब साधन है हमारे पास और फिर भी हम सिर्फ डिजायर ही करते रहे, वो तो गलत है ना। अगर रिसोर्सेज है फिर तो हमें
ये जो है ये नारदीय पुराण वाला श्लोक है
जी प्रभु जी,
तो उसमें तो करना ही है, करना है, अभी करने की इच्छा करे, करने की इच्छा करे, संकल्प मन में करूंगा, और नहीं करे तो भी। ये प्रभुपाद जी ने श्लोक में भाव लिखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप ऐसे समझ लो कि अब ये को उदाहरण कोई सटीक नहीं है, प्रभुपाद जी को गुरु जी ने कहा था कि आप प्रचार करना पाश्चात्य देश में, मन में तो संकल्प था लेकिन 40 साल लग गए और 40 लाख साल के बाद उसको करके दिखा दिया, तो ऐसा संकल्प मन में हो जिसकी तैयारी करता रहे तो भी वो भगवान उसको दास्य में स्वीकार करेगा, ऐसे समझना चाहिए। कभी कभी हम मन में सोचते हैं कि ये हमको करना चाहिए, परंतु करने की ऐसी परिस्थिति अभी है नहीं, तो हमारे मन में भो के हम कर्म करेंगे भगवान के लिए, तो समय आने पर वो कर भी दें और करके दिखा दें तो फिर वो माना जाएगा। ये प्रभुपाद ने संभवतः उनके अपने मन में ऐसा भाव आया इसलिए लिखा है।
थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ जी
प्रभु जी, ये जो जैसे जप और सेवा भगवत श्रवण जिसका भगवान को अर्पण करना है, जो बताया कि जप वगैरह को इसको अर्पण करने की विधि क्या होती है प्रभु जी?
क्या
अर्पण कैसे किया जाता है, ये जो भक्ति के कर्म जैसे जप और सेवा वगैरह अर्पण करने भगवान को?
एक अर्पण करना है, गुरु जी को दीक्षा लेना है, तो फिर वो दास हमारे पीछे दास लगा देता है, ये हमने सब कुछ अर्पण किया, हमारा शरीर हमारे कर्म जो हमने चार वचन किया है कि ये पालन करेंगे, ये अर्पण किया ना यज्ञ के सामने गुरु को, तो हमारे तब तो हमारे पीछे दास का नाम लगा, तो हम तो दास के भक्त हो गए ना
जी। जी
हमको दास के भक्त तब कहा गया जब हम ये चार वचन मानने के लिए तैयार हुए, पहले नाम से अपना जप पहले जप करेंगे और चार निषेध को से बचेंगे। एक नेम है, जप करना नेम है और चार कर्म चार नेम का पालन करना निषेध है
जी। जी
तो ये अर्पण तब हो गया जब गुरु के शरण लिया
जी प्रभु जी।
हाँ जी
थैंक यू प्रभु जी,
हरे
कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हाँ जी
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।
हाँ जी बोलिए।
प्रभु यही प्रश्न है कि जब हम अर्पण करते हैं तो जैसे हमने बोला कि हम कुछ माला अपने गुरु के लिए अर्पण करेंगे, सो हम अभी सो क्वालिफाइड कि हम अर्पण कर सकें?
वो जो वचन किया है वही अर्पण है, ऐसा नहीं है कि रोज रोज। वैसे देखिए जो जो करने कहने का सिद्धांत ये होता है, हम जब जप करने बैठे तो कहते हैं हम तो भगवान आपके दास हैं, आपकी आपकी प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहे हैं, और जब कार्य हो जाए तो कहे कृष्ण अर्पण वस्तु। ये तो एक मर्यादा है, जो करे तो न करे, परंतु इसका अर्थ ये है कि हम उस भाव से करते नहीं क्या
नहीं मारा प्रभु। जैसे हमने कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स बोला कि अपने गुरु महाराज की हेल्थ के लिए करेंगे,
हाँ ठीक है, एक भाई 16 तो करना ही है, उसका अधिक जितना चाहे उतना करो। प्रभुपाद ने कहा है कम से कम 16, अधिक जितने करो उतने करो, और किसी को अर्पण करो तो अच्छा है।
तो प्रभु उसका अभी क्वालिफाइड क्या मैसे अर्पण कर सके
क्या?
कि हमें इतनी क्षमता है क्या मैसे जो एक्स्ट्रा राउंड हमारे वो मतलब काउंट होंगे?
वो संकल्प
नहीं, हमने तो अपने भाव पे कर दिया, बट एक्सेप्ट होता है कि नहीं?
वो संकल्प करना पड़ता है, हम संकल्प करके आज 10 मालाएं हम जो है इस व्यक्ति के भगवत सेवा में लगने के लिए अर्पण करते हैं, स्वस्थ के लिए अर्पण करते हैं, फिर अर्पण करके हम तो भगवान को देंगे, अभी भगवान स्वीकार करेगा उसको तो उसकी मर्जी है ना, हमारा काम है अर्पण करना, स्वीकार करना भगवान के बस में। हरे कृष्ण।
उसी तरह
हाँ जी हाँ जी,
एकादशी के लिए भी ऐसा कर सकते हैं जैसे फास्ट हमने रखा है तो उनके लिए?
देखो सारे काम हमारे भगवत अर्पण है
जी,
क्योंकि हम तो इनके बदले में कोई भोग तो चाहते नहीं है, कर्म कांड की तरह तो करते नहीं है, तो हमारे कर्म सारे भक्ति के भगवत अर्पण है, इसलिए हमको दास कहा जाता है। चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे पूजा हो, चाहे आरती हो, चाहे भागवत पढ़ना है, ये सारे हमारे कर्म कृष्णार्पण है गुरु के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, तो इसलिए हमको दास्य भक्ति में गिना जाता है
जी। हरे कृष्ण।
जैसे लाइफ मेंबर है, पैसे देते हैं उनको, हम तो लाइफ उनको दास्य भक्ति नहीं, उनको दास नहीं कहते, वो दास्य भक्त में नहीं आते, सेवा तो करते हैं, पैसा देते हैं मंदिर के लिए, परंतु वो दास्य भक्ति में नहीं, वो पुण्य कर्म है, वो दास्य में नहीं आएगा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये कई लोग जैसे हम लोग जाते हैं किसी धाम में जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी या दूसरे डिवोटीज बोलते हैं मेरे लिए भी थोड़ा सा वहां पे ऐसे कर देना, तो ये इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होता हर किसी का? कैन वी डू लाइक दिस के दूसरे के लिए हम जैसे अभी माता जी पूछ रहे थे अर्पण कर देना कुछ राउंड चेंट करके, तो विल इट काउंट, इसमें थोड़ा सा डाउट था।
देखिए अगर आपको कोई आप जा रहे हैं वृंदावन, कोई आपको कहे कि ये 5,000 रुपया हमारी तरफ से ले जाओ और मंदिर में वो भोजन करा देना साधुओं को, तो उसको तो फल मिलेगा, आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपने बीच में माध्यम बने, कुछ तो आपको ही मिलेगा उसका, उसको मिलेगा ही मिलेगा। केवल वो जबान से कह दे के जाके मेरा ये सब कुछ कर लेना, तो आप भी नहीं करोगे, करेगा तब जब वो कुछ देगा तब करोगे, ये सेवा करना तब होगी। तो तो जब कोई सेवा देगा तो उसका जरूर फल मिलेगा। और हम कहते कभी कभी हम स्नान करते हुए किसी का स्मरण करते हैं कि भाई जमुना जी आपके स्नान के लिए उसको आना था, आ नहीं पाया, उसके ऊपर कृपा करना। कोई कहे और उसका मन का भाव हो तो उसको उसका भाव मिलेगा, फल मिलेगा।
ठीक है
हाँ जी हाँ जी। इसको उदाहरण देते हैं कि देखो आपका बेटा है अमेरिका में है, आप यहाँ बैठे हो, अब उनको पैसा चाहिए यहाँ से, तो आपके पास तो रुपया है, उधर तो डॉलर चाहिए, तो आप यहाँ रुपया जमा करोगे, बैंक वाला डॉलर दे देगी। ऐसे ही हम आप किसी के लिए यहाँ अपनी भाषा में जो दे देंगे, वो जहाँ भी होगा जीव उसको उसी रूप में वहाँ मिल जाएगा। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है।
थैंक यू।
हरे कृष्ण, आप भी एक माला जप लीजिए हमारे लिए, हम भी कथा करते रहे।
जी जी प्रभु जी,
हरे कृष्ण,
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी
हरे कृष्णा।
हाँ जी
हाँ जी, टंडोर प्रणाम प्रभु जी।
हाँ जी बोलो
प्रभु जी। जैसे पिछले चैप्टर में आपने बोला था, जैसे कोई अचर वगैरह के दर्शन करता है या कोई भगवान के उत्सव में भगवान के रथ के दर्शन करता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, तो फिर भी प्रभु जी अपना वो लोग भगवान से फिर दोबारा जुड़ते क्यों नहीं है, या फिर वो दोबारा पाप क्यों करते हैं?
देखो इसमें मुख्य बात है कि उस वाकई वो दर्शन करने के लिए आया था कि ऐसे जाते हुए देख लिया
जी,
और उसके बाद वो पाप नाश हो गए, फिर उसके बाद वो भक्ति करेगा तो फिर चलो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर दोबारा पाप करते रहेगा, अपना जीवन पाप में हो ही जाएगा। इसका भाव ये है कि ये इतने शक्तिशाली साधन है, कोई एक बार देखे तो उसका कल्याण हो सकता है, परंतु हो उसका सकता है जिसका टाइम तैयार हो गया है, जो उसके लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि सबका हो जाएगा, ऐसे हजारों लोग देखते हैं लेकिन उनमें से कोई एक है भाविक होके आ जाता है।
अच्छा, जिसका टाइम मतलब भगवान की तरफ से हो गया उसको उसको कंप्लीट फायदा होगा,
जिसके अंदर से कुछ तैयारी पहले से है उसको हो जाएगा।
संस्कृति जैसे पहले की कोई जैसे पुण्य है या कुछ है,
जमीन तैयार की हुई है और बीज गिरा तो फल निकल आएगा, जमीन ही तैयार नहीं है तो क्या करोगे।
हाँ जैसे अभी जी प्रभु जी प्रभु ठीक है प्रभु।
तो कुछ लोगों के लिए तो ये होता है इसलिए ये प्रमाण है, सबके लिए नहीं हो सकता है।
जैसे प्रभु जी कई लोग भक्ति में लगे भी होते हैं पर उतनी स्पीड से उनकी उन्नति नहीं हो पाती या कुछ है, वो रोज दर्शन करते हैं,
वो इसका कारण ये है कि अभी तक बहुत से जाने अनजाने में अपराध हो रहे हैं।
यस,
इसको हम उदाहरण देते हैं कि आपकी गाड़ी है
जी प्रभु
और बरसात में कीचड़ में अटक गई है
जी,
आपका पेट्रोल जल रहा है, एक्सीलेटर पे जोर लगा रहे हो, गाड़ी में आवाज भी आ रहा है लेकिन एक इंच आगे नहीं बढ़ रही है, उधर ही घूम रही है। ये है हमारे भक्तों की हालत, वो बेचारे हैं कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी, रोज हरे कृष्णा जप रहे हैं, एक्सीलेटर दबा रहे हैं, व्हील घूम रहा है, दर्शन हो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे
जी प्रभु।
इसके लिए तो अब ये है कि या तो कोई धक्का देने वाला पीछे हो ताकि कीचड़ से निकले, वो चाहिए कोई अच्छा भक्त जो फिर पीछे से धक्का दे, और धक्के वाला नहीं है तो आगे से कोई ट्रैक्टर लाके खींचे तभी यहाँ से निकल पाएंगे।
वो भी प्रभु भक्तों की कृपा से मिलता होगा,
वही भक्तों की कृपा ही हमको बाहर धक्का देगी, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे,
नहीं तो वही रह जाएगा वो।
हमारा तो वही कीचड़ में घूम रहे अभी हाल फिलहाल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, जनवर जनवर बम बम जनवर बम। प्रभु जी यदि कोई भक्तों की सेवा करता है, ड्यूटी सीढ़ी सेवा करता है बिना किसी लालच के, तो वो भी अर्पण कर सकते हैं।
भक्तों की सेवा करना भगवान को बहुत अच्छी लगती है, वो ये नहीं कहे कि मैं लालच से नहीं करता हूँ, वो कहे मैं लालच से करता हूँ, भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होता है इसलिए करता हूँ, संसारी लालच नहीं है लेकिन भगवान की प्रसन्नता।
संसारी को पैसे का लालच नहीं है, मतलब आध्यात्मिक लालच है, पैसे का लालच नहीं है।
लालच शब्द होना चाहिए आगे, कल नहीं आप अगले हफ्ते आपको पढ़ाएंगे कि लालच ही भगवान को प्राप्त करने का साधन है, बिना के लालच के भगवान नहीं मिलेंगे। लालच जरूर चाहिए, लोलुपियम तो एकम मूलम, एक ही कीमत है भगवान को प्रेम प्राप्त करने की, लोभ करना, इसलिए लोभ करो।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद
कृष्ण, धन्यवाद, हरे कृष्ण, धन्यवाद,
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, डिवोटीज तो प्लीज प्रभु के लिए एक बार हरे कृष्ण उच्चारण करेंगे सब लोग।
हरे कृष्ण, दूसरा क्लास कर रही है, एक पहले